ये खत्म हो गया पूजा,
मुझे इन पर स्कॉच टेप लगाने दो।
नहीं आप स्कॉच और टेप मुझे दे दीजिए, कुछ और कार्टून्स भी यहाँ लेके आता हूँ मैं अभी।
मुझे इनको पैक तो
नहीं,
करने
नहीं,
दो
आप, नहीं बस रहने दीजिए, जहमत ना कीजिए ना,
तुम भी तो थक गए हो।
नहीं आपका काम नहीं है, बहुत भारी है
भाई। आप क्यों कर रहे हैं, हम कर देंगे ना, इसमें कोई जल्दी कौन सी है
बेटा, अकेले ले जा सकते हो।
हाँ
हेमंत मियां जरा इधर आओ, इस तरह से
पकड़ो। आप उठा रहे हैं, मैं उठा लेता हूँ ना, अब रहने दीजिए, मैं उठा लेता हूँ।
मेहदी बेटा जरा एक मिनट इधर आना।
जी भूषण,
अहमद को देखो।
बंदे खुदा सुबह से इसी तरह मायूस है।
मायूस होना भी चाहिए, 15 साल का था जब मेरे अब्बू उसको यहां लाए। बड़े अरसे तक रातों को यहीं सोता था। मैंने जब यहां काम शुरू किया तो 20-22 साल का था। फौजी खिदमत के बाद सीधा अब्बू के पास चलाया।
वाह वाह अहमद साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक ठाक हैं आप?
अबू जान शालची साहब आ गए, मैं जरा सामान ले जाता हूँ, हो सके तो आप उनके पास जाएं, मैं मेहरान की मदद कर रहा हूँ जरा।
ठीक है बेटा।
अस्सलामु अलैकुम खैरना साहब, शुक्रिया, आप ठीक हैं?
अहमद साहब इस बात पर कि यहाँ से जा रहे हैं दुखी हो गए हैं।
इत्तेफाक से मुझे एक फर्द की जरूरत है, जब यहाँ की तामीरात शुरू करेंगे तो एक फर्द की जरूरत पड़ेगी कि जो कारीगरों पर नजर रखे। अहमद साहब आप काम की फिक्र ना करें, काम वालों के लिए हमेशा काम है।
अरे हाजी साहब, अहमद हमारी फैमिली के एक मेंबर की तरह है, नहीं होते तो हम खुद को अधूरा महसूस करते हैं।
आप अगर मुझे नहीं भी चाहेंगे मैं आपको नहीं छोड़ने वाला। शालची साहब आप यहाँ को तोड़ना चाहते हैं?
नहीं, क्यों तोड़ूंगा इसको,
अच्छी बिल्डिंग है, हमारे लिए तो बहुत मुफीद रही है।
हाँ लगता है कि बहुत मजबूत बिल्डिंग है और फायदेमंद भी है।
मैं जाकर चाय लाता हूँ आपके लिए।
शुक्रिया।
सलाम अलैकुम जनाब।
वालेकुम अस्सलाम मेहदी साहब, आप कैसे हैं?
शुक्रिया, आप ठीक हैं ना? शालची साहब मैंने तकरीबन तमाम सामान समेट लिया, एक कमरे में रख दिया है, इंशाल्लाह बस एक दो हफ्ते के अंदर कोई जगह तलाश कर लूँगा, सामान सारा ले जाऊँगा, बस एक मेज़ कुर्सी बाकी रहेगा, तो आप उसे रास्ते में अगर रुकावट बने तो आप यहाँ ले आकर आंगन रखवा दीजिए।
मेहदी साहब ऐसा ना कहें, मैंने आपको बता दिया था कि मुझे जगह खाली करवाने की कोई जल्दी नहीं है।
नहीं हाजी साहब, आपको पहले ही काफी तकलीफें दे चुके हैं।
अरे कैसी तकलीफ साहब, मैं दुआ कर रहा हूँ कि आपको यहाँ नजदीक कोई जगह मिल जाए ताकि हमसे मुलाकात होती रहे।
खुदा करे, मुझे तो इस महल्ले की बहुत आदत सी हो गई है।
अबू जान मुझे जरा खैरुद्दीन साहब के पास जाना होगा।
कुछ हुआ है बेटा?
नहीं, मुझे बुला रहे थे बात करने के लिए।
ठीक है बेटा जाओ, लेकिन हमें खबर जरूर देना।
जी जी, आपको कोई काम तो नहीं है?
नहीं बेटा,
खुदा सलामत रखे।
खुदा
खुदा।
आइए शालची साहब, आइए एक चाय पीते हैं।
शुक्रिया शुक्रिया, चलिए।
सलाम अलैकुम।
वालेकुम सलाम बेटा, कैसी है?
शुक्रिया। फूफी जान, कितनी जल्दी आ गई।
अस्पताल में देर लग गई, सोचा अब क्लिनिक जाने का कोई फायदा नहीं है, तो बाकी मोहब्बत में जल्दी घर आ गई।
अभी अभी सोई है, चाय के लिए।
अरे नहीं,
जगा देती हूँ।
नहीं नहीं,
तुम्हारी फूफी की कोई खैर खबर?
ठीक है, डॉक्टर ने कहा है कि अब उनको ले जा सकते हैं।
आहिस्ते, तुम्हारे बाबा भी सोए नहीं हैं, सुन लिया तो नाराज होंगे।
अम्मी जान, आखिरकार तो उन्हें बताना ही होगा ना, क्या तय नहीं था कि आज उनके साथ बात करेंगे?
अरे मैंने आज बात करने के लिए मुंह खोला ही था, जूं ही सुरैया का नाम लिया चेहरा अनार की तरह बगोला हो गया, मुझे बात ही नहीं करने दी। मुझे यकीन है कि यहाँ लाने की इजाज़त नहीं देंगे। अलबत्ता ज़्यादा गलत भी नहीं कहते, शायद सुरैया यहाँ आके कुछ ऐसा कह दे या कर दे कि फिर से मोहसिन को बुरा लग जाए।
क्या मतलब अम्मी, सुरैया फूफी का हमारे अलावा कोई नहीं है, कहाँ जाएंगे?
जी दादी अम्मी, खुदा नाराज होगा।
बेटा मुझे तो कोई एतराज़ नहीं, लेकिन यकीन है कि नेमत इसके यहाँ लाने पर राजी नहीं होंगे।
डॉक्टर ने कहा है कुछ अरसे तक उसे हर काम के लिए किसी की मदद की जरूरत है, हम उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते।
फातिमा।
अच्छा परस्तु बेटा, अब जब ये खुदा की बंदी मैडम बुजुर्ग मरहूम हो चुकी हैं, तो फानी के साथ मेहदी के केस का क्या बनेगा?
नहीं मालूम फूफी जान, मैं भी मुसलसल इसी बारे में सोचे जा रही हूँ।
उसोजादे साहब, आपने इब्तदाई हुक्मों पर तजदीद नज़र की है, उनको जल्द से जल्द मेरे पास पहुँचाइए। एक मिनट होल्ड कीजिएगा।
तशरीफ़ किया,
बहुत खुश आमदीद।
शुक्रिया आपका, बैठिए आप।
कोई बात नहीं, प्लीज़ माजद के साथ माफ़ कीजिए। हाँ हाँ, दोबारा अपील दायर करने के लिए उनकी ज़रूरत है जी। मैं ना हुआ तो सिक्योरिटी को दे दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, खुदा निगबान, खुदा हाफिज़। अच्छा आप ठीक हैं मेहदी साहब?
शुक्रिया जनाब।
आपके लिए खुशखबरी है, कल फानी साहब के वकील सुलेमान साहब मेरे पास आए थे, बताने आए थे कि उन्होंने आपके खिलाफ अपना मुकदमा वापस ले लिया है।
उसे पूछा नहीं कि ऐसा क्यों किया, उन्होंने इरादा बदल दिया?
उन्होंने खुद बता दिया, मेरे साथ तफसीली बात की। पता नहीं आपको मैडम बुजुर्ग मेहर की मौत का इल्म है कि नहीं?
जी हाँ, बहुत अफसोस हुआ।
सुलेमान साहब ने कहा कि फानी साहब फिलहाल इस कत्ल के सिलसिले में हवालात में।
यानी फानी साहब ने उनको कत्ल किया है?
अलबत्ता फिलहाल एक फर्जिया है, लेकिन फानी के खिलाफ काफ़ी सबूत मौजूद हैं। एक सबूत यह है कि मैडम बुजुर्ग महर ठीक उसी रात कत्ल हुई हैं कि अगले दिन उनको अदालत आके आपके हक में और फानी के खिलाफ गवाही देनी थी उन्हें।
तो क्या यह हो सकता है कि फानी ने इस वजह से उनको कत्ल किया हो?
कुछ कहना मुश्किल है, पुलिस ने फानी के वकील सुलेमान साहब को केस की तफसीलात नहीं बताई हैं, लेकिन मैडम बुजुर्ग महर ने कत्ल के लिए मुहर्रिक की मौजूदगी की वजह से फानी पर शक किया जा रहा है। फानी के वकील सुलेमानी साहब को इत्तेफाक से वो चेक मिल गए जो फानी ने अदालत में कहा था कि उसने वापस नहीं लिए हैं, और समझ गए कि उनके मौकिल ने उन्हें भी धोखा दिया है, तो फानी के पास जाके उनसे रजायतनामा लिया ताकि उनके वकील की हैसियत से तुम्हारे खिलाफ मुकदमा वापस ले ले। आप खुश नहीं हुए फरामन साहब?
क्यों नहीं, आपने वाकई बहुत मेहरबानी की खिरदमन साहब। इस पूरी मुद्दत में जनाब आप मेरे लिए एक बड़ा सहारा रहे।
नहीं नहीं ऐसा मत कहें, डॉक्टर फरामन के हमारे ऊपर बड़े एहसान हैं। अब भी आपको बुलाने का मकसद यही था कि आपसे एक इजाज़त ले सकूं।
किस सिलसिले में?
सुलेमान साहब इस बात पर कि इस अरसे में फ़ानी साहब के धोखे में आ गए थे और आपके खिलाफ मुकदमा बनाया था, दुखी हैं। कह रहे थे कि अगर आप चाहें तो फ़ानी के खिलाफ हितक इज़्ज़त का मुकदमा दायर कर सकते हैं, और मैं खुद अदालत में आकर फ़ानी के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार हूँ। कहा कि आप चाहें तो बगैर फीस के इस केस में आपके वकील बन सकते हैं। मैं क्या जवाब दूं उन्हें, आप फानी के खिलाफ मुकदमा करना चाहते हैं या नहीं?
खैरतमंद साहब, मैं क्यों एक ऐसे इंसान के खिलाफ जो कत्ल का मुलजिम है, نیا مقدمہ دائر کروں۔
السلام علیکم۔
کیسی ہیں؟
ٹھیک ہے، آپ کیسی ہیں؟
اللہ کا شکر۔ توبہ کا
دادی کے پاس چھوڑ آئی ہوں، آئی ہوں آپ کو لینے میں۔
کہاں بھائی؟
ایک منٹ آ کے بیٹھیے۔
کوئی بات ہو گئی؟ سوریا کو کچھ ہو گیا؟
نہیں کچھ نہیں ہوا ہے، پریشان نہ ہو۔ سوریا پھوپھی کو ہسپتال سے منیریا والے گھر لانا چاہ رہے ہیں۔
اچھا چلو، اچھا ہے۔
مجھے آپ کو لینے کے لیے بھیجا ہے۔ دادا جان اس بات پہ ناراض ہیں کہ سوریا پھوپھی کو کیوں وہاں لایا جا رہا ہے، کہتے ہیں اسے اپنے گھر لے جائیں۔
اکیلے؟
سوچا آپ سے آ کے درخواست کروں کہ دادا جان کو راضی کریں کہ سوریا پھوپھی کو وہاں آنے دیں۔
نہیں بیٹا، میں کون ہوتی ہوں؟
امی جان میں سب کچھ جانتی ہوں، معاف کر دیں۔ دادا جان کی خاطر انہیں معاف کر دیں۔ دادا جان کو جب سے پتا چلا ہے کہ سوریا پھوپھی کو وہاں لایا جا رہا ہے تو کل رات سے اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلے۔
کیوں؟
کہتے ہیں یہاں آئی تو دوبارہ مہدی کو تنگ کرے گی۔
اوہو،
دادا جان سوریا پھوپھی سے سخت ناراض ہیں۔ آپ لوگوں کے وہاں سے چلے جانے کے بعد سے دادا جان نے بہت دکھ اور پریشانیاں جھیلی۔ جب میں وہاں ان لوگوں کے گھر گئی تو آپ نے تمام ناراضگیوں کے باوجود مجھے معاف کر دیا۔ سچ تو یہ ہے کہ میں آپ کی باتوں کو بالکل نہیں سمجھ سکتی تھی، لیکن سوریا پھوپھی کے بارے میں آپ اور دوسروں کی باتیں سننے کے بعد سمجھ گئی کہ آپ نے کیا جھیلا ہوگا۔ اس عرصے میں میں نے جو کچھ سنا، مجھے پتا چلا کہ سوریا پھوپھی کی بد اخلاقی اور خود غرضی کی وجہ سے اس بیچ کئی لوگ بلا وجہ اذیت میں رہے۔ دادی جان کی خواہش ہے کہ آپ منیریے والے گھر آ جائیں۔ پلیز صرف آپ ہی دادا جان کو منا سکتی ہیں۔
نعمت اللہ، وہ اکیلی تو اپنے گھر نہیں جا سکتی نا۔
کیوں نہیں جا سکتی؟
ابو جان پھوپھی نارمل حالت میں نہیں ہے، اکیلی نہیں رہ سکتی۔
اچھا تو اسد اللہ سے کہیں کہ وہ آ کے ساتھ
رہے۔ اسد اللہ نہیں جا سکتا، وہ خود بھی بوڑھا ہے اور اپنی بیوی کے ساتھ پھنسا ہوا ہے، اس کی بیوی بھی تو بیمار ہے۔
میں ان باتوں میں نہیں آنے والا، نہیں چاہتا کہ یہاں آئے۔ تم اس کے پاس جاؤ، ٹھیک ہونے کے بعد اپنے گھر واپس آ جاؤ۔
میری بیٹی ہر روز اسپتال جاتی ہے، اس کے اپنے کام ہے، اس کو یہاں لانے دو۔ کم از کم دن میں اور پرستو اس کا خیال رکھ سکتے ہیں۔
یہاں لانے کی کوئی ضرورت نہیں، مہدی کو اب کہیں جا کے سکون کے دل ملے ہیں۔ یہ یہاں آئے گی تو دوبارہ وہی پرانے قصے شروع ہو جائیں گے۔ یہاں آنے کی کوئی ضرورت نہیں، جائے اپنے گھر۔
اگر خدا نہ خواستہ پھوپھی کو کچھ ہو گیا تو سب سے زیادہ آپ ہی کو پریشانی ہوگی۔
اب میں نہیں چاہتا کہ وہ میرے بچے مہدی کے ساتھ ظلم کرے۔ ایک دفعہ یہ غلطی کر چکا ہوں، اس کو دوبارہ تکرار نہیں کرنا چاہتا۔
سلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کتنا اچھا کیا تم نے آ کر، میں قربان جاؤں تمہارے، میں صدقے جاؤں تمہارے۔ کیسی ہو بیٹا؟ اچھا کیا جو اسے لے کر آئی۔
پریشان
السلام علیکم بابا جان۔
وعلیکم السلام اکرم، میری پیاری بہو، میری پیاری بہو۔ جانتی ہو یہ لوگ مجھ سے کیا چاہ رہے ہیں؟ میں نے آپ کے حق میں ایک غلطی کی تھی، 20 سال تک اس کی سزا بھگتا رہا، اب یہ دوبارہ مجھ سے وہی غلطی کروانا چاہتے ہیں، دوبارہ پہلی سیڑھی پر لانا چاہتے ہیں۔ میں تمہارے اور محسن کے سامنے بہت شرمندہ ہوں. جانتا ہوں کہ خدا کو جواب دینا پڑے گا. یہ سمجھ ہی نہیں رہے کہ میں کیا چاہتا ہوں. نہیں سمجھتے کیا ہی نہیں سمجھتے کہ اتنے عرصے کے بعد تم یہاں آئی ہو اور اس گھر میں آنا جانا کر رہی ہو. دوبارہ سے آنا چاہتی ہو. کیا فاطمہ کوئی یہ چیز نہیں نظر آ رہی. میں نہیں چاہتا کہ تمہیں دوبارہ ثریا سے نقصان پہنچے.
میں اگر اس عرصے میں یہاں نہیں آئی تو ثریا کی بد اخلاقی کی وجہ سے نہیں بلکہ اس لیے کہ ہمیشہ سمجھتی تھی کہ آپ مجھے پسند نہیں کرتے.
تم میری بڑی بہو ہو. میں تمہیں بہت چاہتا ہوں, بہت پیار کرتا ہوں. یقین مانو میں نے ثریا کی حسد کی وجہ سے کبھی بھی اپنے جذبات کا اظہار نہیں کیا. تمہارے بچوں اور اپنے بیٹے اپنے جگر گوشے سے محسن سے کبھی بھی اپنی محبت کا اظہار نہیں کر سکا. نہیں جانتا تھا کہ کیا کروں. اسی لیے نہیں چاہتا کہ ثریا دوبارہ اس گھر میں آئے. نہیں چاہتا. حتیٰ اس نے آپ کو یہاں سے نکالنے کے بعد بھی تمہاری جان نہیں چھوڑی. ہمیشہ آپ کے خلاف غلط باتیں کرتی تھی. میری برداشت مزید جواب دے چکی تھی. اس کو تین برابر حصہ دیا, تین برابر حصہ, تاکہ یہاں سے چلی جائے اور دوبارہ مجھے نظر نہ آئے. اب جب کہ میرے پوتے مہدی نے مجھے معاف کر دیا ہے اور یہاں آ چکا ہے, اور تم نے بھی یہاں آ کر مجھے معاف کر دیا ہے, تو یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ دوبارہ یہاں آئے, دوبارہ یہاں آئے, پھر سے آئے. میری بیٹی, میں برداشت نہیں کر سکتا. تم جا کے ان سے کہو, لگتا ہے میری زبان نہیں سمجھ رہے. جاؤ بیٹا, اب یہ گھر میرا نہیں رہا ہے. اب یہ مہدی کا گھر ہے, تمہارا گھر ہے. جاؤ بیٹا, جاؤ ان کو سمجھاؤ.
بابا جان, ثریا پھوپھی اب کسی کو تنگ نہیں کر سکتی سوائے اپنے آپ کے. یہ خدا کی مصلحت تھی کہ مہدی جا کے انہیں نجات دے. میں آپ کو بہت یاد کرتی تھی.
السلام علیکم.
وعلیکم
السلام. علیکم دادی جان.
سلام.
السلام علیکم پھوپھی جان.
وعلیکم السلام.
امی کو لے کے آئی ہوں.
کہاں ہے؟
دادا جان کے پاس ہے.
مہدی بیٹا.
السلام علیکم امی جان.
جیتے رہو بیٹا.
کیا ہوا بھابھی, مان گئے بابا؟
ہاں مان گئے.
خدا کا شکر.
خدا کا شکر. مہدی بیٹا, کل تمہیں میرے ساتھ آنا ہوگا. دونوں ثریا پھوپھی کو اسپتال سے یہاں لائیں گے.
स्माइल है? बात नहीं करना बेटा। जानती हो कि अगर बात करोगे तो तुम्हारे अब्बू नाराज हो जाएंगे। अरे इसकी आवाज तो बंद कर दो। ये लड़का डॉक्टर के पास गया या नहीं?
अब्बू से तो नंबर ले चुका है।
वो तो पता है लेकिन गए या नहीं?
समाना, डॉक्टर के क्लिनिक एक फोन करके पूछो, देखो वहां गया या नहीं है।
अभी तो बैठो, अपना खाना खाओ।
सलामुअलैकुम।
वालेकुम अस्सलाम।
मेरा नाम यासरी है। मेरे शौहर को डॉक्टर से विजिट का टाइम लेना था, मुझे ये पूछना है कि वो वहाँ पर आए हैं या नहीं।
क्या नाम है उनका?
इस्माइल। इस्माइल मुशफिक।
पता नहीं, अभी तो विजिट नहीं हुए लेकिन अगले हफ्ते के लिए टाइम है।
बहुत शुक्रिया आपका।
जी कोई बात नहीं,
खुदा हाफिज़। गया अगले हफ्ते के लिए टाइम दिया है।
अब ज़्यादा खुश भी ना हो, पता नहीं जाएगा भी या नहीं।
सलाम, फ़ोन किया था सिर्फ ये बताने के लिए कि डॉक्टर से टाइम लिया है। परेशान ना हो समाना, मेरी मदद करोगे तो ठीक हो जाऊंगा।
अस्सलाम वालेकुम अब्बू जान, मुझसे कोई काम था।
वालेकुम सलाम बेटा, आओ बैठो।
कुछ हुआ है?
आज तुम्हारी यूनिवर्सिटी के डेन डॉक्टर रुजबहानी ने मुझे फोन किया था।
डॉक्टर रुजबहानी?
हाँ, अपने बेटे के लिए रिश्ता मांगने की गरज से आना चाहता था। मैंने कहा कि पहले तुम्हारी राय पूछूं, पहले तुम्हारे साथ बात करूं। अच्छा,
आपका नंबर उनके पास कैसा है?
क्या फर्क पड़ता है। मैंने उनसे कहा कि कल दोबारा फोन करें, आने का कह दूं।
नहीं नहीं, असल में इस टाइम मेरा शादी का कोई इरादा नहीं।
क्यों?
ऐसे ही।
ये तो कोई जवाब ना हुआ। तुम्हें आखिरकार शादी करनी होगी, और अब ये तो तुम्हारा आखिरी टर्म है।
मैं मजीद पढ़ना चाहती।
इत्तेफाकन डॉक्टर रुजबहानी ने कहा कि उसके बेटे को स्कॉलरशिप मिलने वाली है और डॉक्टरेट के लिए बाहर जाना चाहता है। कह रहा था कि अपने बेटे को तन्हा नहीं भेजना चाहता। तुम अगर चाहती हो तो तुम भी जाके उसके साथ वहीं पर अपना एमफिल मुकम्मल कर सकती हो।
लेकिन मुझे बाहर जाना बिल्कुल भी नहीं पसंद, और मुझे शादी के बारे में नहीं सोचना।
क्यों नहीं सोच सकती?
नहीं, बात वो नहीं जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। आप यकीन रखें मैंने वो बात बिल्कुल भी भुला दी है। मुझे इस वक्त अपने साथ मसला है।
अपने साथ क्या मसला है तुम्हें? देखो मेरी बेटी, ये बात वाज़े है कि डॉक्टर रुजबहानी की फैमिली एक अच्छी और असील फैमिली है। उनका बेटा भी तुम्हें चाहता है, उसने खुद बाप से तुम्हारा रिश्ता मांगने का कहा है। तुम भी बिलावजह इनकार नहीं करो, पहले खूब सोचो उसके बाद जवाब दो।
लेकिन मुझे उनमें कोई दिलचस्पी नहीं है। अबू जान, आप हमेशा खुद कहते हैं ना कि कामयाब शादी के लिए दो तरफा चाहत जरूरी है, इसीलिए मैं सोचती हूँ कि डॉक्टर रुजबहानी को भी अपने लिए किसी और को ढूंढना चाहिए। माफ कीजिए।
मेरा पपूठा कुछ बेहतर हो गया ना?
हाँ, डॉक्टर को टोपोग्राफी दिखाई थी।
हाँ,
तो क्या कहा उसने?
कहा आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा, बस जरा टाइम लगेगा, काफी दवाइयाँ भी दी हैं, लेकिन अब काफी बेहतर हो चुका है ना?
हाँ।
तुम्हें क्या हो गया?
पता नहीं किसने रोज बहाने को अब्बू का नंबर दिया है।
फोन किया था कि रिश्ता मांगने आ रहे हैं, है ना? तुमने कहा आ जाए, है ना? है नाजनीन?
फोन नंबर तुमने दिया है ना?
है। मुझे क्या?
तो किसने दिया है?
मुझे क्या मालूम।
ठीक है।
सोचो 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 मेरी जान।
मालिक मकान, सलाम अलैकुम।
अम्मी माफ कीजिएगा, इसके सोने का टाइम तो सोचे से लाके सुला
दूं। कोई बात नहीं, आराम से रहो। कुर्बान हो जाऊं बच्चे के अपने, कुर्बान मेरी जान। हाय, अब्बा जान ने कितने जौक शौक से ये जगह हमीद के लिए बनाई थी। अरे हाँ, वो मेहती हमीद की कोई खबर वबर लाया कि नहीं?
नहीं, उन तमाम जगहों में ढूंढ चुके जहाँ पहले गया था, लेकिन अभी तक नहीं मिले।
उस जमाने में ये जगह मुझे कितनी बड़ी लगती थी।
लेकिन अम्मी जान, इस तरह का आना मंजूर नहीं है, मैं बाकायदा दावत देना चाह रही हूँ।
ठीक है मेरी बेटी, अभी वक्त बहुत बड़ा हुआ है, मैंने अब्बा जान से वादा किया कि जल्दी जल्दी वहाँ आऊँगी।
मेहंदी कहाँ गए?
अपने दादा को हमाम ले गया।
पता है क्यों नहीं, मैं उन्हें कपड़े दे देती।
अम्मी नहीं आएंगी, देर हो रही।
मेहरान है भाई, अपने अब्बू के साथ मुझे लेने आया।
अंदर बुला ले।
नहीं भाई नहीं, बैठो ना, बच्चे को आराम करने दो।
अम्मी इस तरह तो अच्छी बात नहीं है।
कोई बुरी बात नहीं है इसमें बिल्कुल, तुमने तो खुद ही कहा है ना कि मुझे दावत करोगी हमारी। इंशाल्लाह जीती रहो। मेहंदी को भी खुदा हाफिज कह देना मेरी तरफ से, मेरी बच्ची गुड़िया मेरी। अरे हाँ सुनो, मेहंदी का बहुत ख्याल रखना, वो बहुत ज्यादा इस खातून के मरने से परेशान है।
जी जानती हूँ अम्मी जान।
उसे तसल्ली देना, कहना कि ऐसा भूल जाए आहिस्ता आहिस्ता।
अम्मी जान मैंने तो मैडम बुजुर्ग मेहर को देखा तक नहीं था, फिर भी उन्हीं का ख्याल आ रहा है। मेहंदी ने तो देखा भी था उनको।
हाँ मैं इसीलिए तो कह रही हूँ कि उसका ख्याल रखना।
जी जरूर।
खुदा तुम सबको सलामत रखे। कुर्बान जो अपनी कलेजी की अपनी बेटी की, खुदा हाफिज बेटा, खुदा हाफिज बेगम साहिबा,
खुदा हाफिज। अम्मी जान अपना ख्याल रखिएगा, सलाम
कीजिएगा। अच्छे इंसान हैं, मुझे यकीन है खुदा आपको बहुत चाहता है। प्लीज मेरे लिए भी दुआ करें, दुआ करें कि मैं भी अच्छी इंसान बन जाऊं। दुआ करें कि खुदा मुझे ही पसंद करे।
मेहंदी सोए क्यों नहीं?
नींद नहीं आ रही है।
अंदर चलिए, यहाँ पे बहुत सर्दी है।
तुम जाके सो जाओ, मैं आता हूँ।
मैडम बुजुर्ग मेहर के बारे में सोच रहे हैं? उसके बारे में मुझसे बात करें, बात करें ताकि हल्के हो जाए।
उसकी आवाज मुसलसल कान में। उस रात फोन करके उसने मुझसे कुछ ऐसी बातें की कि उनके बारे में सोचकर सख्त परेशान हो जाता हूं।
उसने ऐसा क्या कहा?
कहा میرے لیے دعا کرو کہ خدا کو پسند آ جاؤ. کہا کہ میرے لیے دعا کرو کہ اچھے انسان اچھے انسان.
مہدی اتنا خود کو تکلیف مت دے.
آج خیرت مند کہہ رہے تھے کہ پولیس کو شک ہے کہ فانی نے میڈم بزرگ مہر کو قتل کیا ہوگا تاکہ آ کے اس کے خلاف گواہی نہ دے سکے. کاش وہ مجھے نہ ملتی, کاش اس کے پاس جا کے اصرار نہ کرتا کہ عدالت آ کے گواہی دے جیسے جانتا. جیسے اسے معلوم تھا, جیسے اسے معلوم تھا کہ مرنے والی ہے. مجھ سے کہنے لگی آج رات میں چین سے سوؤں گی فرامن صاحب.
امی جان.
ہاں بیٹا.
میری یونیورسٹی کا کارڈ نہیں دیکھا ہے؟
نہیں. تم کہاں جا رہی ہو؟
یونیورسٹی.
بیٹا آج نہ جاؤ, سوریا پھوپھی کو اسپتال سے تمہاری دادی کے گھر پہ لا رہے ہیں, انہوں نے بہت تاکید کی ہے کہ ہم بھی وہاں ہوں.
امی جان معاف کیجیے گا, آج آپ کو اکیلے ہی جانا پڑے گا.
تمہیں تو ابھی کلاسیں بھی شروع نہیں ہوئی ہیں.
آج سبجیکٹ کے تعین کا آخری دن ہے, سچ میں مجھے جانا ہی پڑے گا.
چلو بھائی ٹھیک,
میں فون کر دیتی ہوں نا مہران اور ابو جان آپ کو آ کر لے جائیں.
تمہارے ابو منیریا گئے ہیں, مہدی اور مہران کو بھی سریا پھوپھی کو لینے اسپتال جانا ہے.
قسم سے نہیں آ سکتی امی جان.
چلو کوئی بات نہیں, لیکن کام ختم ہوتے ہی فوراً ہمارے پاس آ جاؤ.
جی اچھا.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. خوش آمدید.
سلام
سلام پھوپھی جان.
میں لے آتا ہوں بھائی جان, میں لے آؤں گا,
آپ کی مدد کرتی ہوں.
پھوپھی کو احتیاط سے.
جی جی
بہت احتیاط سے.
آئے پھوپھی جان آرام سے.
کہاں آرام کریں گی؟
چچا کے کمرے میں.
میں لا رہا ہوں.
نعمت کو معلوم ہے کہ میں آئی ہوں؟
ہاں بالکل جانتے ہیں.
نعمت سے کہہ دو اگر راضی نہیں ہوں میں اپنے گھر چلی جاؤں.
یہ کیا کہہ رہی ہیں پھوپھی جان؟ آپ اندر آئیے, میں ابھی ابو کو آواز دیتی ہوں, آپ دیکھ لینا.
جب تک نعمت نہیں آئیں گے میں اس گھر میں نہیں آؤں گی.
ابو جان آرام سے.
سلام میری بہن.
وعلیکم سلام بھائی. مجھے آنے دو گے گھر میں؟
کیا یہ تمہارا اپنا گھر ہے؟ اس گھر کا مالک میں نہیں ہوں, یہ تم سب کا گھر ہے. آئیے, بہت اچھا کیا تشریف لا کر.